सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत दिल्ली के इस सुल्तानपुरी के इलाके में आप सभी उत्साह और श्रद्धा पूर्वक उपस्थित हुए हैं। सत्संग का सुंदर रूप जो इसी श्रद्धा और भक्ति भावना के कारण बना है, इसका पूरा पूरा आनंद लिया जा रहा है। जहाँ पर प्रेम भक्ति में डूबे हुए हृदय जो इसी की महिमा इसी की गुणगान कर रहे हैं, जिसकी अनन्य भक्ति निष्काम प्रेम भाव से हो रही है, और इसी के गुणगान के करने के साथ साथ जहाँ रसना मन को पवित्र किया जा रहा है, आनंद की महसूसियत हो रही है, वहाँ पर इसी के आगे एक भक्ति करने की शक्ति मांगी जा रही है। भक्ति के रंग में रंग कर जीवन की तमाम घड़ियां बिताने की तौफीक मांगी जा रही है और मांगा जा रहा है सबका भला, सारे संसार और अपने लिए सुमति मांगी जा रही है, क्योंकि भक्त सबसे अधिक चाहत यही रखते हैं। दुनिया में नाना प्रकार की मांगे मांगी जाती हैं, जो दुनियादारी और दुनियावी पदार्थों के ऊपर आधारित होती हैं, लेकिन भक्तों की सर्वप्रिय मांग यही सदैव से रही है कि जिसके कारण जीवन का महत्व है, जिसके कारण घड़ियों की कीमत है, लम्हों की कीमत है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अहम हिस्सा बन के रहे। यूं तो ये सांसें ले रहे हैं, एक सांस अंदर जाती है, एक बाहर आती है, ये क्रिया चलती चली जा रही है। यानी कि इतनी सांसें दिन भर में तो हजारों की संख्या में प्रदान करता है, लेकिन कितनी सांसें हैं जिन सांसों को लेते हुए तेरा एहसास रहा है? कितनी घड़ियां कितने लम्हे ऐसे रहे हैं जब तेरा एहसास रहा है, मन में शुद्ध भावनाएं रही हैं? तो इस तरह से हर घड़ी हर लम्हा खूबसूरत बनाने के लिए अपने जीवन का भक्त यही मांग मांगते हैं, यही तौफीक मांगते हैं कि असली सुंदरता जीवन की बने आए। शरीरों की सुंदरता, शरीरों को और सुंदर दिखाने के लिए उसके साथ जुड़े हुए अनेकों अनेकों साधन, वस्त्र आभूषण इत्यादि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भक्त जो असली सुंदरता मानता है वो सूरत की नहीं है, वो सीरत की है। वो असली खूबसूरती उन सुंदर भावनाओं की मानता है कि उन सुंदर भावनाओं के कारण ही असली सुंदरता है। सीरत सुंदर है तो सुंदरता है, ख्याल सुंदर है तो सुंदरता है, भावनाएं सुंदर है तो सुंदरता है। और इन्हीं भावनाओं से युक्त जिस मकान में रहते हैं तो वो मकान घर बन जाता है और वहाँ पर स्वर्ग हो जाता है। एक ऐसी महक की महसूसियत उन सुंदर भावनाओं के कारण खुद करते हैं और साथ ही साथ जिससे नाता जुड़ता है उनको भी वही महक प्रदान करते हैं। जैसे खुशबूदार फूल हाथ में उठाया हुआ, उस फूल को जो हाथ में हमने खुद उठा रखा है उसकी महक का आनंद खुद भी ले रहे हैं और हमारे हाथ में वो खूबसूरत फूल पकड़ा हुआ जो भी निगाह हमारी तरफ डालता है तो उसको भाता है, उसको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और वही फूल उठाए हुए हम किसी के करीब चले जाएं और उसकी महक वो भी ले लेता है, उसकी खुशबू का आनंद वो भी ले लेता है। कोई हम तक चल कर आ जाए वो भी उसी नज़दीकत के कारण वो महक ले लेता है। इसी प्रकार से ये महकता हुआ जीवन जो सुंदर भावनाओं के कारण है, जो सुंदर सोच के कारण है, जो सुंदर इखलाक के कारण है, जो सुंदर व्यवहार के कारण है, इससे जहाँ अपनी शोभा है, आनंद है, वहाँ पर औरों के लिए भी हम वरदान बनते हैं। इसीलिए महापुरुष संतजन भक्तजन ये प्रार्थना भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इसी पे आधारित उत्तम संदेश भी दे रहे हैं कि ये भावनाएं कौन सी हैं। ये भावना प्यार वाली, नफरत वाली नहीं, प्यार वाली। प्यार से ही जहान सज सकता है, सवर सकता है। प्यार से ही घर स्वर्ग बन सकते हैं। प्यार के कारण ही संबंधों में मजबूती आ सकती है। प्यार के कारण ही चारों तरफ का वातावरण सुखद बन सकता है। लेकिन इसी प्यार की कमी के कारण और घृणा वैर नफरत की एक बहुतात होने के कारण ना घर स्वर्ग बन रहे हैं, ना मोहल्लों में शांति है, ना शहरों में से खिंचाव खत्म हो रहे हैं, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, दमन बढ़ता चला जा रहा है, शोषण बढ़ता चला जा रहा है। एक वैर ईर्ष्या नफरत के कारण जुल्म सितम बढ़ता चला जा रहा है। वैर ईर्ष्या नफरत किसी को फलता फूलता देकर हो जाती है, घृणा नफरत किसी की जाति को लेकर हो जाती है। घृणा और वैर की दीवार धर्म और मजहब के नाम पर खड़ी हो जाती है और यही हैं जो चारों तरफ मातम फैलाने के कारण बनते हैं। यानी कि वैर ईर्ष्या घृणा नफरत जलन ये हरगिज कभी भी इस धरती को जन्नत ना बना पाएंगे। जिस तरह से इंसान अक्सर धार्मिक लोगों के बहकावे में आकर मजहब का नारा, धर्म का नारा बुलंद करके मन में ये बात बिठाने में कितने कामयाब हो जाते हैं कि जुल्म और सितम करके भी जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, एक अल्लाह की दरगाह में हमारी परवानगी हो जाएगी, एक राम हमें गले लगा लेगा। जब ये शरीर छोड़ेंगे हज़रत ईसा मसीह जी अपने बगल में बिठा लेंगे। तो इस प्रकार की एक मान्यताओं से युक्त इंसान इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं वलियों गुरु पीर पैगंबरों के वाणी जो बताती है वो यही बताती है कि अगर नफरत वैर ईर्ष्या कर रहे हो तो मेरे करीब क्या तुम तो दोजख की आग में जलते रहोगे ताउम्र। You will burn till eternity. Your soul will be burning it till eternity. अगर तुम मेरे से नाता तोड़कर और मेरे बंदों से प्यार करने की जगह नफरत करते हो, उन पे जुल्म ढाते हो, तो मेरे करीब नहीं, तुम आग में जलते रहोगे। तो यही वही वली गुरु पीर पैगंबरों की वाणी इंसान को ये बता भी रही है, लेकिन फिर भी ऐसी मति के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है कि फिर भी इससे विपरीत चाल चल के भी उसके परिणाम वो सोच रहा है जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने जो बताए वो परिणाम न मानकर ये वो परिणाम मान रहा है जो धर्म के ठेकेदार हमें बता देते हैं। तो इसीलिए इंसान अपना नुकसान करता है, औरों का नुकसान करता है, वातावरण को भय दुखद और विषैला बनाता है। तो इसलिए वो इंसान हकीकत और सच्चाई से कोसों दूर माना जाता है। तो आज सच्चाई के करीब आने के लिए सत्य को जानने और समझने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। सच्ची भक्ति किसको कहते हैं, बंदगी किसको कहते हैं, इबादत करने वाला कौन है, प्रभु के करीब कौन है, हरि की दरगाह में किसकी परवानगी है, ये सब जो पहले भी महापुरुषों ने कहा, आज भी गीत कविता व्याख्यान के रूप में ये दर्शाया जा रहा है, ये बात सामने रखी जा रही है कि प्यार जो करने जानते हैं वही प्रभु की सही मायनों में अभिव्यक्ति है। जैसे कहते हैं कि गॉड्स मैनिफेस्टेशंस आर इन सो मैनी फॉर्म्स, कि परमात्मा ईश्वर निराकार की मैनिफेस्टेशंस कितने ही रूपों में है, लेकिन जो प्रेम के रूप में है यही सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। इसी प्रभु परमात्मा की एक सुंदर प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, जिन प्रेम कियो तिन ही प्र पायो, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव कंपैशन टॉलरेंस। और अगर इन्हीं बलियों गुरु पीर पैगंबरों को मानकर ना लव ना टॉलरेंस ना कंपैशन यानी कि ना दया ना करुणा ना प्रेम ना सहनशीलता, ये सब कुछ नहीं है, और फिर भी इंसान सोचता है कि सच्चा पैरोकार तो मैं हूँ, क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं गॉस्पल्स जो हैं उसको सुनता हूँ, क्योंकि मैं 5 दफ़ा नमाज पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं विशेष दिशा की तरफ रुक करके अपना सिजदा करता हूँ, क्योंकि मैं श्री गुरु नानक देव जी की वाणी को झूम झूम कर पढ़ता सुनता हूँ, क्योंकि मैं स्नान जप तप करता हूँ, क्योंकि मैं जप तप करता हूँ, क्योंकि मैं माला फेरता हूँ, क्योंकि चंदन का लेप करता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है प्यार करने की, फिर कोई ज़रूरत नहीं दया करने की, फिर कोई ज़रूरत नहीं है करुणा मन में रखने की, फिर तो पार उतारा है ही है, क्योंकि जाप तप स्नान कर्म क्रियाएं कर रहा हूँ, परवानगी है ही है, भक्ति मेरी पूर्ण है ही है। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा छल धोखा अपने आप के साथ किया जा रहा है, किसी और के साथ तो क्या, अपने आप को धोखे में रखा जा रहा है, और अपने आप को धोखे में रखने वाले अपने आप का नुकसान सबसे अधिक करने वाले होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि प्रेम की गंगा बहो, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, और इधर पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ कि हम पढ़ने पढ़ाने से समझ लेते हैं पंडित हो गए, हमारा रुतबा ऊंचा हो गया, मोक्ष और मुक्ति हमारे हिस्से में, और भक्ति सही मायनों में हमारी ही। तो ये किस तरह की इंसान की सोच रखकर ये मूल्यवान जीवन अपना नष्ट करता चले जा रहा है, ये अमोलक घड़ियां जो हाथों से छिनती चली जा रही हैं, जो लौट के फिर से आने वाली नहीं है, जो फिर से वापस आने वाली नहीं है, जो गई सो गई, जो बीत गई जो बीत गई, लाख दौलत वाले हो वापस नहीं ले आओगे, लाख शारीरिक शक्ति रखने वाले हो उन घड़ियों को वापस ना ला सकोगे, और एक घड़ी को भी वापस नहीं ला सकोगे तो फिर ये इंसानी जन्म कहाँ पर वापस ला पाओगे। ये जो दुर्लभ जन्म है ये बार बार हाथ आता नहीं है, ये नफरत करने के लिए नहीं मालिक ने हमें दिया है, ये प्यार करने के लिए दिया है, प्यार से जहान को सजाने के लिए दिया है, सोचने समझने की ताकत इंसान को सबसे अधिक इसीलिए दिया है जो जानवरों पशुओं को नहीं दी है, ये सोचने समझने की ताकत, ये शक्ति, ये एनालिसिस करने की, ये विश्लेषण करने की, ये जानवर पशु को नहीं दी है, वो ऑलमोस्ट हाई परसेंटेज उनका इंस्टिंक्ट्स वाला है, वो इंस्टिंक्ट्स और फितरत तक रहते हैं, विश्लेषण और एनालिसिस उनके हिस्से में नहीं है। वो नॉलेज और सोचने की शक्ति वो सबसे ज़्यादा इंसान को बख्शी है, लेकिन इंसान ही है जो ना विश्लेषण करता है ना अपने आप को एनालाइज करता है, और वो भी केवल और केवल इंस्टिंक्ट्स लेवल तक रहता है। जैसे वो मांस का टुकड़ा देखकर झपट पड़ते हैं, और इंसान की वही स्ट्रांग इंस्टिंक्ट ये भी मांस का टुकड़ा देखकर ये झपट पड़ता है। तो इस तरह की इंसान की वो ऊंचे दर्जे वाली सोच और समझ कहाँ गई? वो एनालिसिस कहाँ कर रहा है अपने आप का कि मेरी दिशा क्या है, मेरा रुख किस तरफ है, मेरी भावनाएं क्या है, मेरा कर्म क्या है, मैं देन क्या दे रहा हूँ, मैं समय की कितनी संभाल कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कितना सजा संवार रहा हूँ, ये कभी भी इंसान अपने अंदर झांकता नहीं है। यानी कि अगर झांकेगा ही नहीं तो अपने आप का खाक विश्लेषण करेगा, अपने आप की चाल की क्या खाक वो एनालिसिस करेगा, और अगर नहीं करेगा तो संभलेगा कब? जब कब्र में चला जाएगा, जब शरीर आग को समर्पित हो जाएगा, जब पानी में बहा दिया जाएगा, जब चील और गीदे मांस नोच ले जाएंगे, क्या उस वक़्त संभलेगा, क्या उस वक़्त समझेगा? उस वक़्त तो कुछ भी नहीं, सब कुछ लुट गया, सब कुछ हाथों से छिन गया, अब तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जिस वक़्त तेरे पास वक्त था, उस वक्त ही जागने की ज़रूरत है, उस वक्त ही संभलने की ज़रूरत है, उस वक़्त ही प्यार करने की ज़रूरत है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं जो प्यार वाली भावना है वो उत्तम भावना है। जिस हृदय में प्यार है वही दिल सही मायनों में धड़कने वाला दिल है, वरना तो दिल होते हुए भी धड़कन होने के बावजूद भी वो पत्थर से भी अधिक बदतर वो माना जाता है, पत्थर से भी अधिक वो चोट देने वाला माना जाता है, पत्थर से भी ज़्यादा वो कष्टकारी होता है वो दिल जो प्यार के तहत नहीं धड़कता है। जैसे वो शायर का शेरदास अक्सर पढ़ता है कि हर धड़कते दिल को तुम पत्थर एक हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो, एक उम्र लग जाती है दिल को दिल बनाने में। यानी कि हर धड़कता पत्थर, ये शायर कह रहा है। कोई पूछे शायर को कि तुम्हारा दिमाग सही है, पत्थरों में कहाँ धड़कन होती है, और तुम कहते हो कि हर धड़कते पत्थर को तुम दिल समझते हो। शायर बहुत सूझवान है, शायद मरम जानता है, शायर उसकी गहराई तक पहुँचता है। जो तुम तल पे जीने वाले, जो केवल एक शारीरिक और पदार्थ और हिरसो हवस तक सीमित रहने वाले, जो घृणा वैर नफरत की तल तक जीने वाले, तुम कहाँ उस गहराई में उतर सकते हो? जहाँ तक ये कहने वाला वो शायर उतर चुका है, और वो यही कह रहा है कि हर धड़कते पत्थर को, कि जो दिल धड़कते हैं लेकिन पत्थर से भी कठोर हैं, उसके बारे में कह रहा है कि है तो दिल ही जो सीने में धड़क रहा है, लेकिन इतना कठोर है, धड़कन होते हुए भी कठोर है। वरना पत्थर जो रास्ते में पड़े होते हैं, जो किसी चट्टान का हिस्सा है, कोई रोड़ा है, वो पत्थर उनमें धड़कन नहीं होती, लेकिन ये कैसा अद्भुत पत्थर है कि धड़कन भी है लेकिन फिर भी पत्थर उसको कहा जा रहा है, जो चोट देता है। वो बेजान पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ पांव टकराता है, नाखून उखड़ जाता है, सारे शरीर में पीड़ा महसूस होना शुरू हो जाती है, किसी पे सर पे पत्थर फेंका जाता है, लहू लुहान हो जाता है, कितनी पीड़ा होती है, लेकिन वो बेजान पत्थर धड़कन के बगैर पत्थर वो पीड़ा तो दे ही रहा है, लेकिन ये कैसा पत्थर धड़कन वाला, जो ऐसा छलनी करता है, जो ऐसा एक नुकसान करता है, जो ऐसी पीड़ा देता है कि सारी उम्र कई दफ़ा बीत जाती है, वो पीड़ा दूर नहीं होती है। ये दूसरा, रास्ते में पत्थर टकराया, डॉक्टर से मरहम पट्टी कराई, इंजेक्शन लगाया, पेन किलर्स लिए, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, अब जी कोई पीड़ा नहीं महसूस हो रही। लेकिन ये पथरीला जो दिल, इसने जो पीड़ा दी, कई दफ़ा सारी उम्र बीत जाती है, वो राहत नहीं मिलती है। एक जुबान की बात ही जो महापुरुषों ने कही कि जख्म पर ए तलवार दा पर जीभ दा फट नहीं सिलदा, ये उसी बात को ही दूसरे लफ्ज़ों में बयान दिया जा रहा है कि एक शब्द को ही ले लें कि शब्द ही इतने तीखे और इतने जख्म देने वाले, एक पीड़ा देने वाले, उस पत्थर से भी ज़्यादा पीड़ा देने वाले। तो कहते हैं कि एक जख्म तलवार का तो भर गया, लेकिन जो ज़ुबान का ज़ख्म दिया हुआ वो सारी उम्र पीड़ा देता रहता है, वो आसानी से भरता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इंसान ये नफ़रत छोड़ दे, ये घृणा मत कर, करना है तो प्यार कर, एक निर्दयी न बन, एक करुणा वाला बन, एक दया वाला बन, जिसको कंपैशन कहा जा रहा है। इसी प्रकार से ये दया और करुणा वाला भाव भी बहुत उत्तम भाव है। इसी तरह से विनम्र भाव, एक अभिमानी नहीं, अहंकारी नहीं, हर वक्त मैं ही करता रहे, एक विनम्र भाव वाला, दास भावना वाला, कि मैं तो कोई विशेषता नहीं रखता हूँ, मेरे में कोई गुण नहीं है, मेरे में कोई लियाकत नहीं है, एक हम्बलनेस रहती है। चाहे लाख दौलत वाला क्यों ना हो, लाख पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लाख इल्म वाला क्यों ना हो, लाख कोई पोजीशन वाला क्यों ना हो, लेकिन मन में विनम्रता है, हम्बलनेस है, हलीमी है, मस्कीनी है। तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसे विनम्र भाव वाला भी वातावरण को सुंदर बना देता है, जो घर का वातावरण उसकी विनम्रता के कारण सुंदर रहेगा, समाज में खिंचाव नहीं रहेगा। जहाँ पर ऐसी विनम्रता है, जहाँ पर ऐसी मिठास है, भगवान राम की ही मिसाल हमारे सामने आती है कि परशुराम गरज रहे हैं और ऐसे गरज रहे हैं कि पता नहीं उस वक्त क्या कह ढा देंगे, पता नहीं क्या कर डालेंगे, लेकिन राम जी की विनम्रता ने वो कैसे समाज संभाल लिया। कितना भयानक वहाँ पर स्थिति हो सकती थी, लेकिन वो विनम्रता, वो मिठास, वो कैसा रंग लाई कि वो समय संभल गया। इसी तरह से ये जो मस्कीनी और विनम्रता का भाव है, यही उत्तम भाव है, यही वास्तविकता में कितने कितने ऐसे खिंचाव वाले वातावरण से भी हमें निकाल लेता है। और दूसरी तरफ अभिमान और अहंकार, ये हमारे लिए डूबने का कारण बनता है और यही वातावरण को और खिंचाव वाला बनाने का कारण बनता है। इतने अहंकार, इतने अभिमान कि वो सारे ही समय को कुछ और बना देते हैं। दास ने चंद दफ़ा ये मिसाल दी, हालांकि ये घटना शायद 15-20 बरस पहले की है। और इसी प्रकार से एक विवाह में शामिल, और इस विवाह में शामिल थे और देखा कि कुछ हलचल हो रही है, परिवार वालों के चेहरे खुशी की बजाय संजीदा हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं, तो भेजा किसी को पता कराओ क्या हुआ है। कहते हैं कि बस क्या बताएं, ये परिवार इतना खुश कि बच्चों का विवाह हो रहा है, चाह चढ़ जाते हैं बच्चों के प्रति ऐसी जिम्मेदारी निभाते हुए, लेकिन ये परिवार में क्या हुआ, खुशी के वातावरण में भी ऐसा, तो क्या कोई घटना की हो गई है जिसकी सूचना इन्हें मिली है। कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये परिवार का जो बड़ा दामाद है वो बस इश्यूज बना रहा है कि मुझे पहले क्यों नहीं बैठने के लिए कहा गया, बस इतनी सी बात, इतना अहंकार कि मैं बड़ा दामाद, ये छोटा दामाद, इसको पहले पानी पूछा, मुझे नहीं। ज़रा सोचे, पलड़े में रख कर एक तरफ वो परिवार में खुशी और दूसरी तरफ इतनी सी बात के ऊपर सारी खुशी छीन ली। इतना अहंकार, इतना अभिमान। जो रास्तों में आज हम गाड़ियों के ट्रैफिक में देख रहे हैं, कितना अभिमान। पता नहीं ऊपर परमात्मा ने सीधी गाड़ी तुझे भेजी है कि एक रास्ते चलता हुआ कोई थोड़ा सा छू क्या गया उसकी जान लेने पे उतारू। इतना अहंकार, इतना अभिमान कि मैं, मुझे क्या समझते हैं। महापुरुष कहते हैं कि मैं मेरी तू मत कर, मेरी मूल विनाश के मत कर रहे अभिमान रे बंदे, ये अभिमान तुझे ले डूबेगा। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा, कि जो मैं करता है वो सबसे नीचा होता है, वो डूबने वाला होता है। चाहे फिर जाति के का अभिमान करें, और जाति का अभिमान करने वालों के बारे में भी महापुरुषों ने कहा है कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, इस गर्व ते उपजे बहुत विकारा। कहते हैं कि जाति का गर्व मत कर मूर्ख गवारा, जो जाति का भी अभिमान करता है कहते हैं वो मूर्ख है, वो गंवार है, वो नादान है। जो अपनी जाति का अभिमान करता है और दूसरी की जाति नीची मानकर उसके ऊपर जुर्म ढाता है, और उसका कहीं दामन छू गया तो कहता है मुझे स्नान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कैसी कैसी मान्यताएं ये इंसान में होती हैं, और वही उसके लिए पतन और डूबने का कारण बनते हैं। तो इसलिए नफरत की बजाय प्रेम और अभिमान की बजाय विनम्रता, संकीर्णता की बजाय विशालता, कि तंग दिलियां ना हो, हृदय में विशालता हो, कि विशाल हृदय वाले, जैसे धरती की विशालता, कि धरती कितनी विशाल है, सागर कितना विशाल है, तो ये विशालता यही संभालती है। अगर धरती की बात करते हैं यही संभाल रही है। सागर जो धरती का ही हिस्सा, इतना बड़ा, और यही कितना कुछ संभाल लेता है। तो इस प्रकार से गहराई भी सागर में ही है, विशाल है इसीलिए गहरा ही है। तो इस प्रकार से गहराई भी है, विशालता भी है। तो संकीर्णता नहीं, समुद्र संभाल लेते हैं, छोटा सा एक तालाब, एक छप्पड़, वो तो एक छोटी सी नाव भी नहीं संभाल सकता, तो बड़े जहाज क्या संभालेगा। तो इसलिए विशालता, एक गमले में लगा हुआ पौधा, अब गमले में लगा हुआ पौधा चारों तरफ उसके दीवार है, गमला जो मिट्टी का बना हुआ है, किसी चीज़ का बना हुआ है, अब उसमें पौधा लगाया गया, लेकिन वो दायरा है छोटा सा गमले का। अब जड़ों को फैलाव कहाँ मिले, अब जड़ों को फैलाव नहीं मिलेगा तो शाखाओं को फैलाव कहाँ मिलेगा, अब कहाँ पर कोई उससे छाया ले सकेगा, नहीं ले सकता है। इधर आप वो गमले की दीवारें तोड़ें और उसी पौधे को खुली ज़मीन में लगा दें, देखो फिर कैसे भागती हैं उसकी जड़ें, दाएं बाएं चारों तरफ फैलाव करती है अपना, और इधर वो पौधा बड़ा होता चला जा रहा है। अब शाखाएं बढ़ रही हैं, पत्ते बढ़ रहे हैं, फल बढ़ रहे हैं, फूल बढ़ रहे हैं, इतना आकार उस वृक्ष का बन जाता है, कितने कितने धूप की तपश से राहत ले लेते हैं उसकी छाया में बैठकर। सोचे जब तक वो उस गमले में था, क्या वही उतनी छाया दे पाता, क्या वही उसी प्रकार से फूल और फल इतने दे पाता। वो तभी दे पाया जब वो दायरा तोड़ा। एक कुएं के मेंढक की तरह अक्सर लोग सारी उम्र बिता देते हैं और यही सोचते हैं कि यही मुकम्मल जहान है। होते हैं वो छोटे से दायरे में, वो मेंढक छोटे से दायरे में है, और ये मानकर चल रहा है कि सारा जहान यही है, इसी में समाया हुआ है, इससे बड़ा कुछ है ही नहीं, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, इस प्रकार से वो मानकर चलता है। लेकिन कुएं से बाहर अगर उसको कोई निकाल देता है, फिर पता चलता है कि कुआं तो कुछ भी नहीं है, फैलाव तो सारा बाहर ही है। यानी कि संकीर्णता, तंग दिलियां और दूसरी तरफ हृदय की विशालता भी यही दर्शाती है। तो इसी प्रकार से ये भावनाएं, उत्तम भावनाएं जिनकी होती हैं, वास्तविकता में वही श्रेष्ठ हुआ करते हैं, वही महापुरुषों भक्तों की निगाह और हरि की निगाह में उनका रुतबा ऊंचा होता है। इसीलिए भक्त विनम्र रहने वाले ही आज तक पूज्य बने हुए हैं, आज तक उनकी जय जयकार बनी हुई है। हनुमान जी के पास कितनी ही शक्तियाँ थी, लेकिन वही विनम्रता है उन शक्तियों के होने के बावजूद कि उनके पूजा स्थल कहीं अधिक बन गए, कहाँ पर उनकी मान्यता चारों तरफ फैल गई। क्योंकि शक्तियाँ तो थीं, लेकिन उस शक्ति का अभिमान नहीं किया, वरना तो अभिमान करने के कदम कदम के ऊपर मौके थे कि लंका तक उड़कर मैं गया, वहाँ पर वो बाघ सारे जला डाले, वो राक्षसों का सामना मैंने किया, वो अंगूठी सीता माता तक मैं लेके गया। यानी कि कदम कदम पर मैं की कितनी गुंजाइश थी, कर सकते थे लेकिन नहीं किया, सारा सेहरा राम जी के सर बांधा, इसीलिए आज तक उनकी पूजा हो रही है। तो इस तरह से अभिमानी लोग पता नहीं कितने कितने भ्रमों में जीते हैं, वो भ्रम में अक्सर जी रहे होते हैं, तभी अभिमान कर रहे होते हैं। तो वो भ्रम में एक मिसाल ध्यान में आती है, जो पहले भी कई दफा दी, कि एक इंसान जा रहा था, कुएं से करीब से गुजरा, और करीब से गुजरा तो देखा पानी में उसको चांद नजर आया। अब चांद नजर आया तो उसने सोचा कि ये तो बहुत बात बुरी हो गई, चांद तो आसमान से कुएं में गिर पड़ा, इसको तो निकालना चाहिए। तो वो रस्सी लाता है, उस रस्सी के आगे एक खूंटा सा बांधता है और कुएं के अंदर फेंकता है कि मैं इस चांद को इस पानी से बाहर निकाल दूं। तो वो कुएं में जब फेंकता है खूंटा, तो उसका वो खूंटा जो है वो कुएं में पड़े हुए एक पत्थर में अड़ जाता है। अब वो खींच रहा है, जोर लगा रहा है कि वो सोचता है कि चांद अब फंस गया खूंटे में, अब निकाल लूँगा। वो फंसा होता है वो उस पत्थर में, तो जोर लगा रहा होता है वो लोहे का खूंटा, क्योंकि पानी में वो स्लिपरी वो पत्थर था, तो वो खूंटा निकल गया। अब इसने इतना जोर लगाया हुआ था कि पीठ भर वो जाके गिरा। अब पीठ भर जब गिरा तो स्वाभाविक है कि उसकी नज़रें आसमान की तरफ होनी थी, क्योंकि पीठ बल गिरा और आसमान की तरफ नजर गई, देखा चांद, कहता पहुंचा दिया उसको अपने ठिकाने पे। यानी कि कितना पहले तो भ्रम और फिर कितना अभिमान कि मैं ही हूँ चांद को भी अपनी जगह पर संभालने वाला। तो इस तरह से महापुरुष संत जन कहते हैं कि कितने कितने अहंकार में इंसान जीता है, ये नहीं जानता कि एक किनका लगे जैसे गागर को तो फूट जाता है, कहाँ के अभिमान, कहाँ के दावे, मैं ये, मैं वो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं 10 आदमियों को अकेला संभाल सकता हूँ। पता जब चलता है, जब एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि एक गिलास पानी का भी नहीं उठा सकता, काहे के दावे, काहे के दौलत के दावे कि मैं बड़ा धनाढ़ हूँ, मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। लेकिन ज़रा सा भूकंप क्या आया, वही सब जायदादें भी गई, वो दौलतें भी गई, अब मजबूर हो गया, लाचार हो गया। कल तक तो कितने हंकार भरे दावे, और आज वो दौलत ही नहीं है। एक एक पाई के लिए मोहताजी हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि वो महापुरुष संत जन कहते हैं कि शायर लोगों ने कहा कि ऐश में याद खुदा ना रही और तैश में खौफे खुदा ना रहा, यानी कि मालिक से डर किस चीज का मान अभिमान करता है। ऐश में याद खुदा ना रही, इस दुनिया के प्रलोभनों में इतना गलतान, मौज मेलों में, हर्षो इवस में, ऐशो इशरत में कि याद खुदा ही नहीं, इस खुदा को ही भूल गया, देने वाले को भूल गया, भूल गया कि ये मालिक खालिक की है जो दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार जो सबको दे रहा है। तो ऐश में याद खुदा ना रही और तैश में खौफे खुदा ना रहा। तैश में ऐसा आया अभिमान में इतना चूर कि बंदों का खौफ तो क्या करना है, मालिक का भी खौफ नहीं, और इतना निर्दयी और क्रूर बन जाता है। तो औसा संगत, यहाँ पर आज इन्हीं भावनाओं के ऊपर आधारित भक्तों ने अपने भाव रखे गीत कविता व्याख्यान के रूप में, ताकि इंसान सोचे विचारे कि वाकई ये बहुत अहमियत रखते हैं हर जीवन के लिए। तो हम जी रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं, तो हम भी समय रहते हुए ही अपने आप को संभाल लें और जहां मंजिल मकसूद को पाएं वहां पर अपने लिए और औरों के लिए अपने जीवन को हम एक लाभदायक बनाएं, एक सुंदर रूप इसको दें। तो यही शुभकामना अरदास के साथ दास इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी, धन्यवाद।